पहले जन्म में लखनऊ के एक रईस मुसलमान के बेटे की कथा। मेरे ताऊ जी के लड़के के लाला त्रिलोक चंद जी मेरे बड़े भाई हैं, लिखने वाला बताता है। उनके एक पुत्र बाबू महेंद्र पाल गोयल BA LLB वकील मेरे भतीजे हैं, जो गाजियाबाद में वकालत करते हैं। अभी जुलाई 1970 की बात है। महेंद्रपाल मेरे पास आए थे। उन्होंने बताया कि गाजियाबाद में ब्रज बिहारी लालजी सिंघल नामक एक इनकम टैक्स अफसर है। उनके एक पुत्र ने अपने पूर्व जन्म की सब बातें बताकर सबको आश्चर्य में डाल दिया। वह अपने को पूर्व जन्म में लखनऊ का एक मुसलमान बताता है। मुझे ये सुनकर बड़ा अचंभा हुआ कि जो मुसलमान पूर्व जन्म को नहीं मानते, उन्हीं मुसलमानों में से एक का पुनर्जन्म हुआ। इससे बढ़कर पुनर्जन्म के सिद्धांत को सत्य सिद्ध करने वाली और क्या बात होगी। तो हमारे मन में उस बालक को देखने की और उससे मिलकर सब बातें लेने की उत्सुकता पैदा हो गई। मैंने अपने भतीजे महेंद्रपाल से कहा कि हमें उस बालक से मिला दो। उन्होंने कहा, चाचा जी, मैं गाजियाबाद जाकर उन इनकम टैक्स ऑफिसर महोदय से आज्ञा प्राप्त करके आपको उससे मिलवाने का प्रयत्न करूंगा। वे गाजियाबाद जाकर ब्रज बिहारी लाल सिंघल इनकम टैक्स ऑफिसर से मिले। उन्होंने हाँ भर दी। तब महेंद्रपाल गोयल ने आकर मुझे सूचना दी और कि उन्होंने स्वीकृति दे दी है, पर उनकी दूसरी जगह के लिए तबादला हो गया है, इसलिए आप 2-4 दिन के अंदर ही गाजियाबाद पहुंचकर उनसे मिल लो, नहीं तो फिर बाहर चले जाएंगे। तो मैं 11 जुलाई 1970 को गाजियाबाद पहुंचा और अपने भतीजे महेंद्रपाल गोयल को साथ लेकर उनकी कोठी पर गया। देखा तो उनके जाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी, सामान ट्रक में भरा हुआ था। लेकिन ऐसे समय में भी उस परिवार ने हमको पूरा समय दिया, बड़े प्रेम से मिले। लड़के के पिता इनकम टैक्स ऑफिसर थे, लड़के की माताजी और लड़के के भाई तथा वह स्वयं पूर्व जन्म की बात बताने वाला लड़का जिसका नाम सुभाष चंद्र, सब हम लोग एक कमरे में बैठ गए। लगभग 2 घंटे तक उनसे मेरी खुलकर बात हुई। मैंने सब बातें नोट कर ली और वो नोट की हुई बातें आपके सामने रख रहा हूं, आप इनको ध्यान से पढ़ेंगे। लड़के के विषय में मैंने कई प्रश्न किए। मैंने लड़के के पिता बाबू ब्रज बिहारी लाल जी इनकम टैक्स ऑफिसर से प्रश्न किया, आपके इस लड़के सुभाष को आपने पूर्व जन्म की स्मृति प्रारंभ में कैसे हुई और इसने प्रारंभ में क्या बताया, माने आपको कैसे पता चला कि ये पूर्व जन्म में कुछ ऐसा है, इसने किस अवसर पर आपको बताया। तो ऑफिसर ने कहा, हम अग्रवाल वैश्य हैं, मेरठ के रहने वाले हैं। मेरठ के सुप्रसिद्ध वकील स्वर्गीय बैजनाथ जी हमारे बाबा थे। हमारे घर जब इस बालक का जन्म हुआ तो इसका शुभ नाम सुभाष चंद्र रखा गया, पर इसे सब लोग बाले नाम से पुकारते थे, बाले। जब हम आयकर अधिकारी होकर बरेली गए तब परिवार के साथ ये लड़का भी था। एक बार इसके बड़े भाई की वर्षगांठ थी, उस दिन उसका जन्मदिन मनाया जा रहा था। जन्मदिन के उपलक्ष में घर में खाना पीना हुआ और उसकी खुशी में बड़े भाई को बाजार से एक कैरम बोर्ड खरीद कर मंगवा दिया। सुभाष का वह बड़ा भाई और सुभाष दोनों कैरम बोर्ड खेल रहे थे। खेलते खेलते अकस्मात किसी बात को लेकर इन दोनों भाइयों में कुछ झगड़ा हो गया। देव योग से उसी समय सुभाष की अपने पूर्व जन्म की स्मृति जागृत हो गई और उसने कोरम बोर्ड को क्रोध में भरकर एक ओर फेंकते हुए अपने बड़े भाई से कहा, ये ले तू अपने इस कैरम बोर्ड को, मैं कोई गरीब थोड़ा ही हूं, मैं तो लखनऊ का एक बहुत बड़ा रईस आदमी था। आज भी लखनऊ के मेरे मकान में 90,000 रुपये गड़े हुए हैं। मैं एक नहीं, अपने उन रुपयों से हजारों कोरम बोर्ड मंगवा लूंगा। बच्चा था, कह दिया। बस उसी दिन से इसने अपने पूर्व जन्म की बातें बताना प्रारंभ किया। बालक सुभाष ने अपने पूर्व जन्म का परिचय क्या दिया। सुभाष से जब हमने पूछा कि तुम पूर्व जन्म में कौन थे, तो उसने बताया कि मैं पूर्व जन्म में जाति का मुसलमान था। उस समय मेरा नाम जान मोहम्मद खान था। मैं एक बहुत बड़ा रईस आदमी था, लखनऊ में रहा करता था। फिर बालक से हमारे प्रश्नोत्तर हुए, सुभाष तुम लखनऊ में कहाँ रहते थे बेटा। लखनऊ में केसर बाग में रह करता था। तुम वहां क्या करते थे। मेरे ससुर बड़े मालदार थे, उनके कोई लड़का नहीं था, बस लड़कियां ही थी, इसलिए मेरे ससुर ने मुझे अपने पास ही रख लिया। सारी जायदाद और अपने दुकान मकान सब रुपयों का मालिक मुझे बना दिया। तुम्हारे ससुर का क्या नाम था बेटा। मेरे ससुर का नाम दिलदार खां था। तुम्हारी औरत का क्या नाम था। तुम्हारे कितने बच्चे थे, उन बच्चों के क्या नाम थे और वे क्या करते थे। मेरी बीबी का नाम शफिया खानम था। वह खूब सूरत औरत थी। मेरे 4 लड़के 2 लड़कियां थी। 2 लड़के उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद में पढ़ा करते थे। उनमें से मेरे सबसे बड़े लड़के का नाम अब्दुल गफार था, अब्दुल गफूर खां था। मेरी दोनों लड़कियों में से एक लड़की तो लखनऊ में ही ब्याही थी और दूसरी इलाहाबाद में। तुम्हारे 90,000 रुपये कहाँ थे। उनके अतिरिक्त तुम्हारे पास और भी रुपए थे क्या, और क्या तुम उस समय अपने पास कोई सवारी भी रखते थे। मेरे पास उस समय काफी रुपया था। मैं बहुत बड़ा रईस आदमी था। मैंने अपने 90,000 रुपये एक जगह बिल्कुल गुप्त रूप से गाड़ कर रख कर छोड़े थे। उन रुपयों का मेरी बीबी शफिया खानम को भी पता नहीं था। मैंने इनकम टैक्स के डर से अपनी बीबी शफिया खानम के नाम से स्टेट बैंक में अकाउंट खोल रखा था। मेरे पास उस समय एक बहुत बढ़िया कार भी थी। मेरा बहुत बढ़िया 3 मंजिला मकान था। मैं उस समय 5 वक्त नमाज पढ़ा करता था। मैं नमाज का बड़ा पाबंद था और रोजे भी रखा करता था। तुम्हारे कार का नंबर था कुछ याद है। हाँ मुझे याद है, मेरे कार का नंबर USJ3289 था। अच्छा तुम्हारी पूर्व जन्म में मृत्यु कैसे हुई, क्या तुम्हें याद है, बता सकते हो। मैं पूर्व जन्म में एक दिन लखनऊ के अपने 3 मंजिले मकान की छत पर खड़ा था कि अकस्मात उस समय एक बंदर ने आकर मेरे पर आक्रमण किया। मैं उस बंदर से घबरा करके भागा तो धड़ाम से 3 मंजिले मकान से एकदम नीचे गिरा और उसी समय मेरी मृत्यु हो गई और फिर मैंने यहां जन्म लिया। तुम्हारी लखनऊ में और कोई चीजें रखी हुई थी क्या जो तुम्हें याद है। मुसलमान लोग सुरमा लगाने के बड़े शौकीन होते हैं। सुरमा गाय में काजल। अच्छा मुसलमान लोग सुरमा लगाने के बड़े शौकीन होते हैं, इसलिए मेरे पास उस समय सोने की 4 सुरमे दानियां थी। वो लगाओ जी। मेरे पास उस समय सोने की 4 सुरमे दानियां थी जो मेरी अलमारी में रखी रहती थी। हमने बालक के पिताजी से जो प्रश्नोत्तर किए और उनसे जिन बहुत सी बातों का रहस्योद्घाटन हुआ वो भी बड़ी विचित्र है। हमने प्रश्न किया, जिस प्रकार ये बालक बताता है मैं अपने पूर्व जन्म में 5 वक्त नमाज पढ़ता था, रोजे रखता था, तो क्या कभी इसके उस जन्म के मुसलमानी संस्कार आपको यहां इस जन्म में देखने को मिले? तो इनकम टैक्स ऑफिसर कहने लगे, एक बार हमने कुछ देखा। वो क्या था? उस समय ये और भी छोटा था। एक बार जब मुसलमानों का त्योहार अलविदा का जुम्मा आया तो आखिरी जुम्मा था, तो इस बालक सुभाष ने अपनी माताजी से कहा, अम्मा आज तो अलविदा का सबसे बड़ा जुम्मा है ना, इसलिए आज तो हमारे घर पर सीमी बननी चाहिए। सीमी कांटा गई है होती होली गई। कभी कभी ये नमाज का कपड़ा बिछाकर नमाज पढ़ने के लिए ऐसे बैठ जाता था जैसे कोई सधा हुआ पूरा मुल्ला मौलवी नमाज पढ़ता हो। उसे देखकर हमको भी आश्चर्य होता था। इसकी उस समय बहुत सी मुसलमानों वाली हरकतें देखकर बहुत से मनुष्य हंसी में इसे बाले की जगह बाले खां नाम से पुकारते थे। यह भी मियां बाले खां नाम से चिढ़ता नहीं था। क्या ये अपने पूर्व जन्म के स्त्री और पुत्रों को याद करता था? बस ये मत पूछिए आप। ये अपने सफिया खानम बीबी की याद में बेचैन रहता था। कभी कभी ऐसा होता था कि हम लोग यदि इसको अपने साथ लेकर किसी रिक्शे में सवार हो रहे होते और यदि इसके आगे के किसी दूसरे रिक्शे में कोई मुस्लिम औरत बुर्का ओढ़े होती थी तो हम यूं ही हंसी में इससे कह देते थे, बाले देख उस रिक्शे में तेरे पहले जन्म की बीबी सफिया खानम बैठी हुई है। तो ये बालक हमारी बात सुनकर एकदम चौकन्ना हो जाता था और उसको देखने के लिए लालायित हो जाता था। हमारी बात को सत्य मानकर अपने रिक्शे के आगे अपने रिक्शे को आगे करने के लिए कहता तथा उसमें बैठी मुसलमान औरत को सफिया खानम समझकर यूं बड़े गौर से देखता था। पर ये छोटा बच्चा था, इसके इस प्रकार देखने में किसी को बुरा भी नहीं लगता था। बाद में भली बात देखने पर ये निराश होकर बोलता, आप लोग झूठ बोलते हो, ये मेरी बीबी सफिया खानम नहीं है, क्योंकि वो तो बड़ी खूबसूरत औरत थी, ये तो काली कलूटी है, ऐसा बोलता था। जब ये छोटा था उस समय हमारे यहाँ एक नौकर रहा करता था जो कुछ पढ़ा लिखा भी था। वह नौकर इसे खिलाया करता था। वह उस नौकर से आग्रह करता कि तू मेरी बेबी सफिया खानम के नाम लखनऊ के पते पर पत्र लिख दे। वह नौकर उसका विशेष आग्रह देखकर इसे बहलाने के लिए ही झूठ मूठ पत्र लिख देता था। उस पत्र को वह बालक लिफाफे में बंद करवाता और उस लिफाफे के ऊपर टिकट लगवाने का कहता और नौकर पुराने टिकट लाकर लिफाफे पर लगा देता और बालक उसे लेटर बॉक्स में डालने का कहता था तो वह इसके कहने के अनुसार लेटर बॉक्स में डालाया करता था। मेरा लिखा गया पत्र मेरी बीबी सफिया खानम के पास लखनऊ पहुँचेगा और सफिया खानम इस पत्र को पढ़ेगी और वो जरूर जवाब देगी, ऐसा सोचकर बालक खुश हो जाता था और पत्र की प्रतीक्षा में रहता था। जब कभी पोस्टमैन आता तो बड़े उत्सुकता से डाक संभालता था और अंत में निराश हो जाता था। जब ये कुछ बड़ी आयु का हुआ और टूटी फूटी भाषा में कुछ लिखने पढ़ने लगा तो अपनी बीबी सफिया खानम के नाम लखनऊ के पते पर स्वयं अपने हाथ से टूटी फूटी भाषा में पत्र लिखता और उसे लिफाफे में बंद कर देता और नौकर को पैसा देकर डाक खाने से टिकट मंगाकर उन्हें स्वयं लिफाफे पर चिपकाकर नौकर को देता कि तुम इसे ले जाकर डाक खाने में डालाओ। नौकर इसको खुश करने के लिए लिफाफा डाक में डालने के लिए जाता था पर डालता नहीं था क्योंकि हमने उसको मना कर रखा था। बाजार से लाकर नौकर से कह देता था कि हमने तुम्हारा लिफाफा डाल दिया है, यह पत्र, यह अपने लिखे पत्र की उत्तर की बड़ी प्रतीक्षा करता और फिर वह उद्विग्न रहता जब उत्तर नहीं आता। ये सिलसिला बहुत दिनों तक रहा। जब इसे अपने पत्र का उत्तर नहीं मिला तो फिर इसने भी पत्र डालने बंद कर दिए। हम भी चाहते थे कि पिछली बातों को भूल जाए और परिवार में वर्तमान रूप से सेट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर इसको पूर्व जन्म की बातें याद आती रहती थी, परेशान होता था। क्या इसके कार के नंबर तथा इसकी बताई लखनऊ की बातें ठीक हैं, आपने कभी मालूम करवाया? हाँ, बातें अक्षर से सत्य थी, कोई संदेह नहीं कि पूर्व जन्म में मुसलमान था, लखनऊ में रहता था। जब इसकी पूर्व जन्म की बातें बताने का जनता को पता लगा तो इसे देखने के लिए आदमी आए दूर दूर से, और कुछ लोगों ने तो लखनऊ में जाकर इसके बताए मकान को यह सोचकर 10-20 हजार रुपये में खरीदने का निश्चय किया कि इसमें बालक के बताए 90 हजार रुपये मिल जाएंगे और सामान भी मिल जाएगा। उन लोगों ने लखनऊ जाकर प्रयत्न भी किया परंतु सफल नहीं हो सके। एक सज्जन इसके बताने के अनुसार इसके पूर्व जन्म की कार का नंबर लिख करके लखनऊ गए। उसने पता लगाया और पता लगा करके सूचित किया कि इस कार का नंबर जो है वो इसी के आदमी के नाम से अभी तक चल रहा है। ये घटना बिल्कुल सत्य है। ये सब सत्य घटना हमने लखनऊ जाकर और भी चीज़ों की जांच कर आपके सामने रखी है। जो मुसलमान 3 काल में भी पुनर्जन्म को नहीं मानते, उन्हीं में से एक मुसलमान को स्वयं हिंदू धर्म में जन्म लेकर पुनर्जन्म के सिद्धांत को सबके सामने डंके की चोट से प्रमाण सिद्ध करना पड़ा। यह है हमारे सनातन धर्म और शास्त्र पुराणों की विलक्षण सिद्धांत की बातें जो इस सत्य घटना के अनुसार अक्षर अक्षर तय सिद्ध हो रही है।
राम सीता राम सीता राम जय सीता राम
जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम
जय सीता राम सीता राम जय सीता राम
जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम
जय सीता राम सीताराम जय सीताराम
जय सीताराम 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 जय जय सीताराम
जय सीताराम 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 जय सीताराम।